أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آگے دیکھیں گے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَفَّلُوا وَلَنْ تَفَّلُوا فَتَّقُ النَّارِ، پھر آگ سے ڈر جاؤ. بس ڈائریکٹ ڈرا دیا، آگ سے ڈرو. جہنم کا لفظ نہیں بولا گیا ادھر، قبر کے عذاب کی بات نہیں کی گئی، بلکہ آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز مشاہدے میں آ چکی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ڈر آگ سے لگتا ہے. کیسے؟ آپ کے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں ادھر، لیکن یو ایس اے اور کینیڈا میں بھی کچھ حد تک میں نے دیکھا، سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ آگ سے ڈرتے ہیں. ایک خاص جگہ ہے، مثال آپ کا یہ ہال ہے، تو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، لکھ کے لگاتے ہیں بلڈنگز کے اندر کہ اس روم میں اس سے زیادہ لوگ نہ آئیں، پھر ایک سے زیادہ ڈور ہوں گے، اور ایک اگر ادھر ہے اس کا ڈور تو ایک ادھر ہے. بھائی کیوں؟ ان کیس آف فائر، آگ لگنے کی صورت میں. لفٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کیس آف فائر، آپ لفٹ نہ لیں بلکہ سیڑھیوں پہ سے جائیں. فیل کیا گیا یہ بات کہ انسان کو سب سے زیادہ آگ سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خوف تو ہر ایک چیز کا ہوگا، لیکن جتنا ڈر آگ سے لگتا ہے اتنا کسی سے نہیں لگ سکتا. آپ سوچیں نا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم اس کو آگ لگ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتق النار، صرف اتنے سے لفظ کو اپنے نوٹس میں اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور غور کریں اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس دنیا کی آگ کو 69 ٹائم مور بڑھا دیا جائے اس کی ٹیمپریچر کو، تو پھر جہنم کی آگ بنتی ہے. میں نے عموماً اوونز کے اوپر ٹیمپریچر دیکھے ہیں، میں خاص طور پہ کریٹیکلی دیکھتی ہوں. موسٹلی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ شاید 300 تک ہوتا ہے، 240, 270, 230. اور اگر آپ فل ٹیمپریچر پہ ایک چکن کو رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے اور بھول جائیں آدھا گھنٹہ اور، تو وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتی ہے. لیکن وہ جہنم جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جلائے، تو آپ سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا. اس کا خلاصہ ایک روایت سے ملتا ہے کہ ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پہ بہت ہی غم کے اثرات تھے، حالانکہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہوا، آج آپ کے چہرے پہ اتنی اداسی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام پہ بھیجا تھا اور وہ کام کر کے آیا ہوں اور اس کا اثر مجھے دکھ رہا ہے. کہا کیا کیا تھا، ہمیں بھی بتائیے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور مجھے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. میں گیا اور میں نے جنت دیکھی، انتہائی حسین، ہر وہ چیز جس کو کسی کا نفس جو ہے وہ پسند کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی پیاری ہے. کہا کتنے لوگ اس میں آئیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ جس کو پتہ چل گیا وہ ہر بندہ اس میں آ جائے گا، کوئی اس سے باہر نہیں رہے گا. کہا آپ ذرا اس کے راستے دیکھ کے آئیے. جب جنت کا راستہ دیکھا تو وہ بڑا مشکل تھا، مشکلات سے بھرا ہوا. اگلے ہی رکوع میں ہم اس کی مزید ڈسکرپشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہا اللہ تعالیٰ بڑا مشکل راستہ ہے. کہا اب کتنے آئیں گے؟ کہا اب تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، اتنا مشکل راستہ ہے. خواہشوں پہ پابندی کا راستہ ہے، نفس پہ بوجھ ڈالنے والا راستہ ہے، کئی گھنٹے بیٹھنے والا راستہ ہے. کہا آپ جائیے جہنم دیکھ کے آئیے. جب جبرائیل جہنم دیکھ کر آئے تو اس کے اندر جو تکلیف دہ مناظر دیکھے، انہوں نے جبرائیل کو اداس کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ بڑی خراب جگہ ہے، ہر وہ عذاب جس کو ایک انسان سوچ سکے وہ اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں یہ سانپ اور بچھو اور آگ تو ہم یہ کہتے ہیں نا جو دنیا میں دیکھے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم کے اندر جو کچھ ہے اس کا اس دنیا میں کوئی بھی تقابل نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں جنت کے لیے آتا ہے نا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جہنم کے اندر کیا کچھ ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آنے والا ہے. تو لہٰذا جہنم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم تو کھیل میں اڑا دیتے ہیں نا، نہیں اٹس اوکے، اٹس فائن، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ جہنم اس سے بہت دور ہے. इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को जलाओ, वो जला के आए, 1,000 साल तक आग जलती रही। वापस आए, कहा अल्लाह ताला आग बहुत जल गई। कहा उसकी हालत क्या है? कहा कि बिल्कुल सुर्ख हो चुकी है, जैसे शोलों की तरह आग भड़कती है। कहा इसको 1,000 साल और जलाओ। फिर 1,000 साल और जला के आए। कहा अल्लाह ताला अब बहुत ही गर्म हो गई है। कहा अब कैसी है? कहा कि उसमें धुआं भर गया है, स्मोकी सफ़ेद हो गई है। कहा अभी और जलाओ। अभी अल्लाह के गुस्से की आग नहीं ठंडी हुई। जब लोग दुनिया में अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं तो अल्लाह ने सब्र भी तो बहुत किया है, और जलाओ। फिर 1,000 साल के बाद फरिश्ते आए और कहा कि अल्लाह ताला अब तो वो इतनी गर्म हो गई कि जहन्नुम की दीवारों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चूल्हे पे बर्तन रखते हैं ना, तो उस बर्तन में कुछ डाल के पकाते हैं तो वो चीज़ पकती है, और अगर खाली बर्तन आग में रख दें तो बर्तन जलता है। और हदीसों में आता है कि जहन्नुम रोज़ अपना खाना मांगती है कि अल्लाह डाल मेरे अंदर सरकशों को, तदु मन अदबरा व तवल्ला। वो रोज़ पुकारती है हर उसे को जो अदबरा, जिसने पुश्त फेरी, दुबर कहते हैं बैक को, कि जो कहते हैं हु केयर्स इज फाइन, व तवल्ला, मुंह फेर के चला जाता है तकब्बुर के मारे। ये जहन्नुम कहती है आओ मेरे अंदर, जल्दी से आओ, पुकारती है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसमें लोगों को डाल के पूछेगा, हल इम्तलाती, सूरह काफ की आयत है, क्या तू भर गई? हल इम्तलाती, तू भर गई? तो वो क्या कहेगी? हल मिम मजीद, अल्लाह और भी हैं तो शौक से ला। इतने लोगों को जहन्नुम में अल्लाह डालेगा, इसके बावजूद जहन्नुम भूखी होगी, कि हत्ता कि अल्लाह ताला फिर उस पे अपना पाँव रखेगा, फिर वो कहेगी कत्तुन कत्तुन या कित्तुन कित्तुन, अल्लाह बस 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 मैं भर गई। और रिवायतों में आता है कि जब मैदान महशर में जहन्नुम लाई जाएगी, कुरान में इसकी दलाइल मौजूद है, वह बुर्रिज़तिल जहीम, बुर्रिज़ा का लफ्ज़ है ज़बरदस्ती लाना, तो उसको लगामें डाली होंगी, 70-70 हज़ार लगामें होंगी जिसको फरिश्तों ने पकड़ा होगा, और उसकी गर्दन होगी। हदीस में आता है कि इस तरह मैदान महशर में से वो सरकशों और अपना फरमानों को चुनेंगी जैसे मुर्गी दाना चुनती है, और अगर उसको लगामों के बगैर ले आया जाए तो वो नेक और बद सबको खा जाए। ये कोई खेल थोड़ी है। लोगों ने तो जहन्नुम के नामों पे फिल्में बना ली, उन्होंने नावल लिख लिए, अफसाने बना दिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं फत्तकुन नार, डर जाओ उस आग से, अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। ये कौन से लोग हैं? ये सरकश लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को ना माना, और इसी तरह इससे मुराद मुशरिक भी हैं, शिर्क करने वाले। और हिजारा से मुराद कौन से पत्थर हैं? इसमें रिवायात में आता है कि वो पत्थर की मूर्तियां जिनके सामने ये सजदे किया करते थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लकड़ी को आग में डाल दें या पानी में भिगो दें, लकड़ी तो बेजान चीज है, लेकिन ऐसा किया जाएगा उनके इबादत गुजारों को शर्मिंदा करने के लिए, कि देखो सारी जिंदगी जिनके सामने हम माथे टेकते रहे, आज वो तो आग में पड़े हुए हैं, या आज खुद को आग से नहीं बुझा सकते तो हमें कैसे बुझाएंगे। यानी वो असनाम जिनकी पूजा की जाती थी। इब्ने अब्बास कहते हैं पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर है। अब देखिए कि इंसानी जिस्म के अंदर क्या है। अगर आप इस थोड़ी सी इस कंपोजिशन देखें बॉडी की, तो गंधक है हमारे जिस्म में, सल्फर है, कैल्शियम, तो आप कई दफ़ा कहते हैं बच्चे में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये दोनों धातें जो हैं ये आग को लगाने का काम करती हैं। यानी इस पर पूरी तफसील है, हमने अपनी एक क्लास में इस पर बहुत डिटेल से बात की थी कि जहन्नुम की आग क्यों नहीं बुझेगी, क्योंकि उसको मुसलसल फ्यूल मिल रहा है, मुसलसल। ये हमारी हड्डियों में कार्बन होता है, आज भी जो लोग हड्डियों को जलाते हैं और उसके अंदर से कार्बन निकालते हैं और न जाने उससे क्या डायमंड्स बनाते हैं, तो ये मुसलसल जब इंसान उसमें डलते जाएंगे तो उसको ना ख़त्म होने वाली एनर्जी मिल जाएगी। आज किसी तंदूर के अंदर आग लकड़ी झोंकते जाएं तो वो आग नहीं बुझती, इस तरह जहन्नुम की आग नहीं बुझेगी। और इसकी दलील भी है कि उनके माबूदों को डाला जाएगा। सूरह अंबिया की आयत 98 में आता है, इन्नकुम तुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्ला, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे, हसबु जहन्नम, वो जहन्नम का ईंधन है। देखिए यहाँ मा ताबुदून आया, बे जान, मन जो होते हैं ना वो जानदार बोते हैं, यानी इंसानों की पूजा, यानी बे जान लकड़ी की और पत्थर की मूर्तियाँ, इनको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और वो वहाँ जलेंगे। ज़रा सोचिए क्या कैफियत होगी, सारी ज़िंदगी जिस बुत के सामने बैठे रहे, उसको अपने सामने जलता हुआ देखकर इंसानों की हसरत क्या होगी। उद्दत लिल काफिरीन, ये तैयार की गई है, आज भी मौजूद है। रिवायतों में आता है कि दुनिया में जो सर्दी का मौसम आता है, तो यानी एक रिवायत, ये मैं सारे आपको इसलिए सिर्फ शुरू के देना है ना, तो मैं आपको बोझल तफसीर नहीं देना चाहती कि हदीस ये है, फलां रावी है, लेकिन ये सारी बातें सही रिवायतों की, इंशाल्लाह जहां जहां आके आपका जहन जरा बड़ा होता जाएगा, फिर यही रिवायतें मुनासिब मौके पे पूरे रेफरेंस और हवाले के साथ आपको दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ आप अभी इब्तदाई दौर में सीखने के, फिर आप बोझल होने लगते हैं, आपको वो बात को सुन के मजा ही नहीं ले पाते, उसकी रूह में नहीं जाते और हवालों में उलझे रहते हैं। लेकिन ये सब के रेफरेंसेस मौजूद है। एक रिवायत में आता है कि जहन्नुम जब इतनी गर्म हो गई तो उसने अल्लाह तला से कहा, अल्लाह तला मुझे सांस लेने की इजाज़त दे, क्योंकि जैसे घुटन होने लगती है ना, इसी कमरे में आप देखें हीट तेज हो जाए तो घुटन होगी ना, तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह तला सांस लेने की तौफीक दे, तो अल्लाह तला ने उसको साल में 2 सांस लेने की इजाज़त दी। और रिवायतों में आता है कि जब जहन्नुम बाहर सांस खींचती है तो दुनिया में गर्मी का मौसम आ जाता है, और जब जहन्नुम अंदर सांस खींचती है, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, इनहेल करते हैं, पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन छोड़ते हैं, इसी मंजर को जरा सोच लें, है कैसे, क्या हो रहा है, वल्लाहु आलम, ये गैब के मामले हैं, और यूमिनूना बिलगैब की बात है। लेकिन रिवायत में इसी तरह मिलता है कि जब वो सांस बाहर खींचती है तो गर्मी आती है, और जब अंदर खींचती है तो सर्दी आती है। अब कोई कहे अच्छा जी फिर दुनिया में कोई कहीं गर्मी होती है कहीं गर्मी होती है, मत सोचिए, बस मान जाइए, इसलिए कि जालिकल किताबु ला रैब फी, शक नहीं करना और मनो अन मान लेना। तो इससे हमने देखा कि जन्नत और जहन्नुम आज भी मौजूद है, और जहन्नुम असल में काफिरों के लिए तैयार की गई थी। अब जो लोग खुशी से जाना चाहते हैं तो फिर वो जाएं, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने वो आप और मुसलमानों के लिए साइन नहीं की थी। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अब देखिए यहाँ बड़े प्यार से कह देते हैं, कोई बात नहीं, इद्दत लिल काफिरीन, शुक्र हम काफिर नहीं है, चलिए फर्स्ट थिंग मान लेते हैं हम काफिर नहीं है, हालांकि हर बंदे को नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या कुफर छुपा हुआ है, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये काफिरीन कौन है, इंसान नहीं है? कभी हमारे दिल में तड़प आई नॉन मुस्लिम्स को देख कर कि अल्लाह ये आग में जाएंगे, ये प्यारे चेहरे, ये गोरे गोरे रंग, ये इतने बेदाग किस्म के जो चेहरे हैं, ये आग में जलेंगे? किसी को पर्सनलाइज करके आप नहीं कह सकते, लेकिन अमूमी तौर पे ये कानून है कि जो कुफर पे मरेगा उसका ठिकाना आग है। हमने क्या कोशिशें की इन प्यारे चेहरों को आग से बचाने की, हम तो अपने आप में जीते हैं, हमें तो और किसी चीज़ की फुर्सत नहीं, इसलिए कि हम बहुत कुरान पढ़ते हैं और दिस एंड दैट। कोशिश कीजिए, दुआ करें इस वक्त, अपने पास एक छोटा सा नोट लिखें इन आयतों के नीचे कि अल्लाह मेरी कोशिश है किसी एक काफिर को आग से बचा ले, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आप तो बिस्तर मर्ग पे भी लोगों को तबलीग करते थे, और एक मौके पे आपकी कोशिश से एक यहूदी बच्चा मुसलमान हो गया, तो आप खुशी से वहां से निकले और आप खुशी खुशी पुकार रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ उस जात की है जिसने इस बच्चे को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया। आप तो अपने चचा के पास उनकी बीमारी की हालत में कह रहे थे कि चचा एक बार कलमा कह दो, मैं अल्लाह से आपके लिए सिफारिश कर लूंगा। हमारे तो दिल ऐसे लगते हैं बेहिस हो गए, हम तो खुश हैं इस पे कि जो कोई कर रहा है करते जाओ, हमारे ताल्लुकात ना बिगड़े, और अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। फिर आगे फरमाया, व बशीरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और खुशखबरी दीजिए ईमान वालों को और अमल सालेह करने वालों को, क्या, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, कि उनके लिए वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या होगा, कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिन रिस्का, जब कभी वो फलों में से रिस्क दिए जाएंगे, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे यही थे वो, यही थी वो जो हमको इससे पहले रिस्क दिया गया, वह उतू भी ही मुतशाबिहा, और वो इसके साथ मिलते जुलते दिए जाएंगे, वलहुम फीहा अज़वाजु मुतहरतुन, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। एक आयत है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें, पॉइंट्स में नोट कीजिए तो आसानी होगी आपके लिए। पहली बात है कि बशर, लफ्ज़ बशर, खुशखबरी दीजिए। कितने खुशकिस्मत थे वो लोग जिनको खुशखबरी मिली, और कितने खुशकिस्मत हैं वो कि जिन्होंने खुशखबरी दी। इससे पता चलता है कि किसी को अच्छी बात की खबर देना ये भी मसनून अमल है। अल्लाह के नबी सहाबा कराम को बशारतें दिया करते थे, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दी। और लफ्ज़ बशारत इसी से है, बुशरा भी इसी से है, ऐसी खबर जिसका असर चेहरे पे दिखने लगे, खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को। अगली बात, अल्लज़ीना आमनू, उनको जो ईमान लाए। ये कौन सा ईमान था? पीछे से जिसकी तफसीलात गुजर चुकी, यूमिनूना बिलगैब से लेके आगे तक। ईमान तो हो जाता है 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद, लेकिन ईमान का कमाल क्या है? अमिलुस सालेहात। जब तक कोई ईमान लाने के बाद अमल सालेह नहीं करता तो उसका ईमान वैलिड नहीं होता। अपने लफ्जों में इसको आप यूं समझ लीजिए कि जब कभी कोई बंदा किसी जगह जॉब के लिए साइन करता है ना, तो ये है उसका ईमान लाना। ईमान के दफ्तर में सिग्नेचर करने का नाम है कि बंदा मुसलमान हो गया, नॉमिनेट हो गया, अल्लाह ने इसको इस्लाम दे दिया। आज के बाद अब इसको अल्लाह ताला मौके देगा अच्छे काम करने के, लेकिन उसके बाद अगले दिन से जॉब के वक्त पे आना और वहाँ जो काम करने को कहा जाए वो करना, ये है अमेलो सालेहात। अगर कोई ईमान ला के वहीं फुल स्टॉप लगा दे तो वो ऐसा एम्प्लॉई है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया, सारी शराइत मानने की बात कर ली, लेकिन उसके बाद शो अप नहीं हुआ। आज ऐसे मुसलमानों की कसरत है जो जुबान से मुसलमान होने को काफी समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे ईमान की सदाकत तुम्हारे अमल सवाले से होगी। अमल सवाले की 2 शराइत होती हैं। पहली शर्त है इखलास लिल्लाह, अल्लाह के लिए हो। हर अमल जो भी इंसान नेकी समझ के करे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, किसी दूसरे के लिए ना हो। और दूसरी इसकी शर्त है इत्तबाए रसूल, सुन्नत तरीके से हो। आप कह सकते हैं कि अमल सवाले की 2 शराइत हैं, जब तक ये 2 शर्तें पूरी नहीं होती कोई अमल सवाले नहीं होता। और इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे तकरीबन रुकू 5 या 6 में कि असल में अमल सवाले में क्या काम है, और इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आसानी के लिए समझ लें कि पहली बात है रियाकारी से पाक हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज अमल सवाले कब होगी? पहली बात, आपने सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ा। वरना आपको पता है कि नमाज पढ़ी तो है लेकिन वही नमाज आपके लिए तबाही बन गई। कैसे? वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए। ये क्या बात है? हम तो सोचते हैं कि नमाज ना पढ़ने वाले के लिए तबाही है। ये कौन से नमाजी हैं जिनके लिए तबाही है? फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन। कौन से? पढ़िए, आपको ये आयत आती है अल्लज़ीना जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, युराउनन नास, यानी नमाज अमल साले कब बनेंगी? पहली बात, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ें, दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो ख़त्म। और दूसरी चीज़, नमाज अमल साले कब है? सुन्नत तरीके से पढ़ेंगे, सल्लु कमा राई तुमोनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। बस इसी कुलिये को हर चीज़ पे लगा लें। वरना तो हर बंदे ने अमल साले की मुख्तलिफ तफसीलात की हुई है। हर बंदा कहता है जो अमल मुझे अच्छा लगता है ना वो ठीक है, ऐसे कर लो तो ये भी ठीक है, ये फलां बुजुर्ग ने कहा ये इसलिए अमल साले, ये फलां के मुशाहिदात का नतीजा, तुम भी कर लो। और इसी से दीन इतना फैल गया कि लोगों ने ये तक कह दिया कि नॉन मुस्लिम्स के भी अमल साले को अमल साले मानो, क्योंकि वो भी तो अच्छा ही काम है ना। तो अभी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए 2 क्राइटीरियन हैं। आज के बाद अपने हर अमल को सोचिए, यहाँ आते हैं ना पढ़ने के लिए, फौरन सोचें क्या अल्लाह के लिए आई हूँ, क्या अल्लाह का कुर्ब पाना चाहती हूँ, अल्लाह की प्यारी बंदी बनना चाहती हूँ। अच्छा, और दूसरी बात कि जो तरीका तालीम या इख्तियार किया जा रहा है क्या ये सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं। बस कहीं भी चले जाएं इंशाल्लाह नहीं भटकेंगे अगर इन 2 चीज़ों को सामने रखेंगे। क्या मिलेगा? अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, तहतिहा इनके नीचे, हा से मुराद जहाँ जन्नात है, मुअन्नस है। अब नीचे किसके? इसकी 3 मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन समझ आती हैं। पहली बात, ऊपर से नीचे आने वाली नहरें हैं, जैसे आबशार, नियाग्रा फॉल देखी है आप में से किसी ने? ऊपर से गिरती है ना, जो चीज़ ऊपर से नीचे गिरे मुराद ये है कि ऊपर से नीचे गिरी जैसे पहाड़ों में से आ रही होंगी। दूसरी इसकी तफसीर की गई कि महल जो होंगे ना उनके पैलेसेस कैसल्स उनके नीचे होंगी। आगे आप पढ़ेंगे सूरह नमल में इंशाल्लाह हजरत सुलेमान के एक महल का तस्करा कि उसके नीचे पानी था। और आजकल तो लोगों ने दुनिया में पानी के किनारों पे बहुत कुछ बनाने की कोशिश की और उसकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के लोगों की राल टपकाते हैं कि पानी के अंदर हमने घर बना लिए हैं। तो ये इंसान की आदत रही है शुरू से ही कि समंदर के या पानी के किनारों पर रहना उसको अच्छा लगता है। और तीसरी इसकी आती है दरख्तों के नीचे से होंगी, लेकिन यहाँ अनहार की बात कर दी गई नहर से भड़के। ये कौन सी नहरें हैं? ये चार किस्म की नहरें होंगी। सूरत मोहम्मद में इनकी तफसील मिलती है, आयत नंबर 15 है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरी आसिन व अनहारुम मिन लबनिल लम यतगैयर ताअमुहू व अनहारुम मिन खमरिल लज्जतिल शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ्फा व लहुम फीहा मिन कुल्ली समरातिन व मगफिरतुम मिन रब्बिहिम। मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया, इसमें नहरें हैं पानी की जिसका जायका नहीं बदला। सोचिए जरा, मीठा पानी, दुनिया की नहरों से भी पीने को दिल नहीं चाहता कि पता नहीं उसमें क्या होगा, ऊपर काई जम जाती है। जन्नत की नहरों में पानी डिस्टिल्ड होगा, जन्नत में किसी फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत नहीं होगी, वो वैसे ही फिल्टर्ड होगा। फिर लबन इन दूध, लम या तगैयर तामू जिसका जायका नहीं बदला। सोचे जरा, दूध की नहर है, कैसी लगे हैं। फिर तीसरी होगी खमरिन, शराब की नहर, कौन सी? जिसका टेस्ट दुनिया की शराब की तरह गंदा नहीं होगा और जिसको पीकर सर नहीं धुंकेगा बल्कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और शराब तो उसको इसलिए कहा ना कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ी उनको पी लें वो, लेकिन पता नहीं वो कैसा मशरूब होगा। अरबी में हर पीने वाली चीज़ को शराब कहते हैं। और चौथी नहर होगी शहद की, असलम मुसफ़ा, क्लीन किस्म का हनी होगा। और आप सोचिए कि यहाँ नहरों की बात क्यों कर दी? आपके मेरे लिए तो शायद ये कोई इतनी बड़ी बात ना हो, हमारे लिए तो दुनिया में इतना पानी है कि टैब खोल के भूल ही जाएंगे कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन सोचिए, ये आयतें जब मक्का के सहराओं में बैठे हुए लोगों के लिए थी। ये इसलिए बात है, बार बार आप कुरान पाक में नहरों का तذکرہ पढ़ेंगे तो इससे मुफसरीन कहते हैं कि ये खास तौर पे क्यों जिक्र किया जा रहा था बार बार, कि मक्का में जो लोग पानी के तरसे हुए थे उनको पता चले अच्छा नहरें होंगी तो कहेंगे ओ वी कैंट इमेजिन। जैसे आज हम में से कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता ना कि चॉकलेट की नहर होगी, कोक की नहर होगी, है? तो इसी तरह वहां लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पानी की नहर होगी। जब मिल जाएगा, कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरतिन, जब कभी रिस्क दिए जाएंगे फलों में से रिस्क, कालू हाज़ अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन कबल, कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमको दिया गया था। रुज़िकू दिए जाएंगे, माजी का सीगा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी शिद्दत के लिए है कि दिया जाएगा। तो कहेंगे ये तो हमें पहले भी दिया गया, ये कौन सी नई बात है, हा? हमने इस पे भी थोड़ी सी बात की थी। मिन कबल से मुराद ये कि दुनिया में, या बास कहते हैं कि जन्नत में एक चीज़ बार बार दी जाएगी, एक दफ़ा दी होगी फिर उसको दोबारा दिया जाएगा, तो वो कहेंगे ये तो क्या है कि ये तो पहले भी मिल गई। वो उतू भी ही मुतशाबिहा, ये तो मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? पहली बात, जन्नत के फल आपस में मिलते जुलते होंगे। दूसरी बात है कि दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। तीसरी बात ये कि उनके अमलों से मिलते जुलते होंगे, जैसा अमल वैसा फल, दुनिया में भी जो अमल करता है वैसे ही फल मिलता है ना। फिर इसी तरह उनके रंग मिलते होंगे, उनके नाम मिलते होंगे, लेकिन जायका फर्क होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो जन्नतें होंगी जहाँ लोग फल खाएंगे और खुश होंगे, और इसके साथ वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे। देखिए जरा, कोई ऐसी नेमत जिसको इंसान का नफ्स पसंद करे वो सब कुछ जन्नत में मौजूद है। पहले अल्लाह ताला ने नहरों की बात कर दी तो सराउंडिंग पता चल गई, माहौल कैसा होगा वहां का। फिर उसके बाद खाने और पीने की बात है। जब इंसान बड़ी नेमतों में होता है ना, तो फिर उसका दिल क्या चाहता है कि उसके साथ कोई साथी भी हो। अकेला इंसान खुश भी नहीं रह सकता। आप किसी बहुत खूबसूरत जगह पे तन्हा जाना चाहते हैं? आप जाके भी वहां कहते रहेंगे है फलाना याद आ रहा है, फलाना याद आ रहा है। और खास तौर पे घर वाले, यानी शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर, तो कहा कि वहां तन्हाई नहीं होगी बल्कि वाला हूँ फीहा अजवाज मुतहरा, पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। मुतहरा का लफ्ज़ बहुत ही खूबसूरत है। एक लफ्ज़ होता है ताहिर या ताहिरा, ये नहीं कहा कि अज़वाजुन ताहिरा, वो एक आम बात है, तहर ताहिर पाक साफ क्लीन। मुतहर के अंदर शिद्दत है, किस चीज़ से पाक होंगी, इसके अंदर आता है कि जन्नत की औरत हैज़ और निफास से पाक होगी। दुनिया में इंसान के साथ कुछ ऐसी गंदगियां लगी हुई हैं जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हीं में पीरियड्स की गंदगी है, जन्नत की औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे। इसी तरह दुनिया में बच्चे के पैदा होने की खुशी, लेकिन उसके बाद 40 दिन का कुछ ऐसा पीरियड जिसको नफास कहा जाता है, जन्नत में ये सब नहीं होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसानी ताल्लुकात, शौहर और बीवी के ताल्लुकात में बाज़ दफ़ा बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह वो एक दूसरे की अलाइश बन सकती है। बाज़ चीज़ें इंसान को एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जन्नत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। हत्ता के जन्नती खाएंगे और उनके जिस्म से पेशाब और पखाना नहीं आएगा, यानी बोलो बरास नहीं होगा। तो सहाबे कराम बड़े हैरान हुए कि अल्लाह के नबी, हम खाएं और पियेंगे फिर भी वहां गंदगी नहीं होगी, तो हमारा खाना कैसे हजम होगा? तो कहा कि जन्नती को एक खुशबूदार डिकार आएगी और उसके साथ उसका खाना हजम हो जाएगा, और जो पानी पिएगा तो जिस्म से स्किन के रास्ते से खुशबू वाला पसीना आएगा और उससे जिस्म की गंदगी वेपोरेट हो जाएगी। कोई टॉयलेट्स नहीं होंगे, जितना पैसा लगाना है टॉयलेट्स पे यहीं लगा लें, क्योंकि दुनिया में भी मैं देखा है लोग सबसे ज्यादा पैसे टॉयलेट्स पे लगाते हैं, जन्नत में ऐसी कोई गंदगी नहीं होगी। और इसी तरह वो बीवियां इखलाकी तौर पे पाकीज़ा होंगी, ताने नहीं देंगी कि तुम्हारे घर आके तो खुशी नहीं पाई, हैं, जुबान की पाक होंगी, इखलाक अच्छे होंगे, फिर किरदार की पाकीज़ा होंगी, किसी और मर्द को अपने ख्यालों में नहीं आने देंगी, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद तो चले समझ ही आती है, पहले आने से क्या है, क्योंकि कोई और लड़की अगर अपने दिल में किसी का तसव्वुर शादी से पहले ले आती है तो वो अपने आने वाले शौहर के लिए खयानत करती है। इसलिए कि ऐसे जज्बात देने थे जो किसी और के लिए नहीं थे, जब किसी और के लिए भी होने लगते हैं तो वो चीज़ समझें कि वो उस आने वाले शौहर का हक अदा नहीं होता। तो फरमाया कि वो पाकीज़ा होंगी, वहुम फीहा खालिदून, सबसे बड़ी नेमत हमेशगी। दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो आप फौरन पूछते हैं कितने दिन का प्लान है, कितने दिन का पैकेज लिया है, रिटर्न टिकट कब की है, होटल बड़ा अच्छा है छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा, बस एक दिन का है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि गम ना करो, जन्नत में हमेशा रहोगे। आप देखिए ये 5 आयतें हमने अभी तक इस रुकू की हैं, इन 5 आयतों यानी आयत नंबर 21 से 25 तक ईमान की 3 बुनियादी चीज़ें आ गईं। ईमान बिल्ला पहली आयतों में गुजरा, ईमान बिर रसूल मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना से, और ईमान बिल आखिरा, यह जन्नत और जहन्नुम की बातों से पता चल गया कि ईमान बिल आखिरा है। कुरान पाक की यही खूबी है कि मुख्तसर से लफ्ज़ों में वो इंसान को दीन का एक खूबसूरत नक्शा देता है। अब बताइए कि आपने इन आयतों से क्या सीखा, कोई सवाल या कोई बात हाथ खड़ा करना चाहें, पूछना चाहें या शामिल होना चाहें तो बता सकते हैं। जी जज़ाकअल्लाह खैर, मैंने शायद इस पे तवज्जो नहीं दी, और क्योंकि ये बात आगे बहुत दफ़ा आएगी, लेकिन आप यकीनन यही सुनने के लिए बैठी हुई थी तो फिर आपको बताना चाहिए और आपकी वजह से सबको बताना चाहिए। देखिए कि अज़वाज का लफ्ज़ अरबी में ऐसे ही है जैसे स्पाउस, जौज जोड़े के मानों में होता है, कपल। स्पाउस क्या होता है, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, ठीक है। जहां भी लफ्ज़ जौज आएगा ना तो उससे मुराद शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब आप देखिए कि हमने यहाँ बीवियां क्यों कहा, इसकी वजह जो है वो लहुम, हुम जो होती है ना, ला वास्ते हुम उनके, हुम जो है ना ये मुजक्कर की जमीर है अरबी में, बस एक छोटी सी चीज याद रख लें, यानी ये मेल का सीगा है, तो लहुम की वजह से हमने अजवाज को बीवियां कहा है। अगर आप इस आयत को यूं पढ़ देना वलहुन्ना फीहा अजवाजुम मुतहर, तो फिर मतलब क्या होना था, उन औरतों के लिए वहां शौहर होंगे पाकीज़ा। तो यहाँ दोनों को मिलेंगे, जो खूबियां औरतों की हैं वही मर्दों की है। मैंने जितनी बातें क्लीनलीनेस की पाकी की बात की वो सब मर्दों के नाते से भी होंगी। मर्द भी गालियां नहीं देंगे, मर्द भी ताने नहीं देंगे, वो भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, वो भी बेजा शक नहीं करेंगे। इस तरह मर्दों के जिस्मों के साथ अगर कोई गंदगी या रतूबत है तो वो भी उसमें नहीं होगी, और इसी तरह से फिर मर्दों के किरदार भी पाक होंगे। आप सोचिए एक औरत के लिए, ख़ास तौर पे आज के फितनों के दौर में, इस बात का यकीन हो जाए कि उसका मर्द उसके अलावा कहीं और नजरें नहीं रखता, कितनी तसल्ली की बात है। औरतों को बिल्कुल इसका डर नहीं होगा कि कि मर तो मेरा लेकिन इसकी निगाहें कहीं और मिली हैं। और हकीकत है कि दुनिया में जब ये चीज़ें मौजूद होती हैं तो दुनिया भी जन्नत बनने लगती है। ठीक है, यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ